आगे कुछ और निफाक वाली बातें। आयत नंबर 60 से 70, रुकू नंबर 9 है। मुनाफिकीन यानी हिपोक्रेट्स, दोगले लोगों की हठधर्मियाँ। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक, क्या आपने इन्हें नहीं देखा। अंदाज देखिए, प्रवोक करने वाला है, थोड़ा सा पुश करने वाला स्टाइल है कि देखिए गौर कीजिए, जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया है इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि शैतान का इनकार करें। शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें बहका कर दूर डाल दे। इनसे जब कभी कहा जाए कि अल्लाह के नाजिल करदा कलाम की और रसूल की तरफ आओ, तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके रहते हैं। फिर क्या बात है कि जब इन पर इनके करतूत के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मलाप का ही था। यानी हम तो असिमिलेट चाहते थे, हम चाहते हैं लोग मुख्तलिफ ना लगें, यानी हमारी नीयत तो बड़ी अच्छी है ना। हालांकि ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्म पोशी कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहिए और इन्हें वो बात कहिए जो इनके दिलों में घर करने वाली हो। हमने हर रसूल को सिर्फ इसीलिए भेजा है कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी फरमाबरदारी की जाए, और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था आपके पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते, तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला और मेहरबान पाते। क्या पता चला कि अगर कभी गुनाह हो जाए तो इंसान अपने दिल का गुबार किसी दीन को समझने वाले के सामने जाकर निकाल ले, उससे अच्छी सी एडवाइस ले और उस बात को छोड़कर आगे से अपनी इसलाह कर ले। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है। आप देखिए कि यहाँ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब होने की कसम खा रहा है, यानी यूनिक स्टाइल है, ओनली वंस इन द कुरान। क्या फव रब्बिका, बस कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख्तलाफात में आपको हाकिम ना मान लें। फिर जो फैसले आप इनमें कर दें, इनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और ना खुशी ना पाएं और फरमाबरदारी के साथ कबूल कर लें। और अगर हम इन पर यह फ़र्ज़ कर देते कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो ऐसे में इनमें से बहुत ही कम लोग हुक्म बजा लाते, और अगर ये वही करें जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर है और ज़्यादा मजबूती वाला हो, और तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन इन्हें राहे रास्त दिखा दें। और जो भी अल्लाह ताला रसूल की फरमाबरदारी करेगा, यहाँ ज़रा सा रुकिए, सूरत फातिहा में हम एक दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर क्या कहते हैं हम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये आयत उसका जवाब है, नोट कीजिए। हम कहते हैं अल्लाह में इनाम वाले लोगों का रास्ता दिखा, अब वो कौन होते हैं, सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, ये बेहतरीन रफीक हैं, ये फजल अल्लाह ताला की तरफ से है और काफी है अल्लाह जानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ादुल खैर 24, यानी इस सूरह कुरान से पहले 4 दिन का जो प्रेप सेमेस्टर ज़ादुल खैर के नाम पे हुआ, उसमें हमने इसी आयत में से 4 गिरोह, अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शहादार और सालेहीन, हर दिन एक एक को पढ़ा, मरातबे ईमान। सिर्फ 4 दिन की 4 फाइल्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN TV। आप सुनिए, आपको खुद पता चलेगा आप कहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कितने पानी में हो, यकीन करें हमें यहाँ इस दुनिया में रह के पता लग जाता है कि हम अल्लाह के यहाँ किस मुकाम पे। हमें अपनी फिक्र लगनी चाहिए कुरान को पढ़ के, और ख़ास तौर पे देखिए कि ईमान से मुतल्लिक इस रुकू में 2 आयात हमने पढ़ी, निसा 60। टॉपिक क्या है, शरीयत का हर फैसला ईमान का हिस्सा है, और निसा 65, शरीयत की पैरवी असल में सुन्नत की पैरवी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। और जो बड़ा खूबसूरत पैगाम इसमें था ना, मकसदे आमदे रसूल, हमारे यहाँ कहते हैं जश्ने आमदे रसूल। मकसदे आमदे रसूल क्या था, कि उसकी इताअत की जाए, उसको फूलों के गुलदस्ते नहीं, कोई लफ्ज़ों के खूबसूरत मोती परोकर माला नहीं, नबी के तरीके पे आइए, नबी की ज़ात से भी मोहब्बत करके, नबी की बात से, नबी के मिशन से, नबी ने जैसी ज़िंदगी गुजारी वैसी ज़िंदगी गुजारने के इरादे से ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर फेथ इन एक्शन क्या है, शैतान के बहकावे में नहीं आना, रसूल की इताअत को ही अपना मकसूद बनाना है, अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान को कामयाबी की बुनियाद बनाना है। दुआ कीजिए और बड़े प्यार से शऊर से दुरूद पढ़िए नबी सल्लम पर। आप अल्लाह के नबी की मोहब्बत को महसूस तो करें। ये कुरान एक एक लफ्ज़ नबी के सीने पे उतरा था। आज एक आम इंसान आपको पढ़ के सुनाता है तो आप कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें पढ़ाया। ज़रा सोचिए, नबी ने इसको सीने पे लिया होगा तो क्या होगा। तो चंद सेकंड के लिए अल्लाह के नबी से अपनी मोहब्बत को महसूस करें। आगे है जी रुकू नंबर 11, आयत 71 से 76। टॉपिक है अहले ईमान को अपनी हिफाजत की तैयारी का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम फनफिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीया। आपके रब की एक और पुकार आपके सामने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, अपने बचाव का सामान ले लो, फिर गिरोह गिरोह बनकर कूच करो, या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। और यकीनन तुम में से बास वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं, यानी डिली डेली का शिकार होते हैं, इफ्स एंड बट्स शो करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि मैं इनके साथ मौजूद ना था। देखिए, नेकी के मौके से पीछे रहने पे खुश हो रहे हैं मुनाफिक लोग। और अगर तुम्हें अल्लाह का कोई फजल मिल जाए, यानी वहां से कोई फायदा मिल रहा हो, तो इस तरह गोया कि तुम में इनमें दोस्ती थी ही नहीं। कहते हैं काश मैं भी इनके हमराह होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। देखिए, मुनाफिक कौन होता है? गुड टाइम फ्रेंड, अच्छे दिनों का साथी। आपकी कोई दोस्त सहेली अगर आपके साथ अच्छे मौकों पे तो साथ साथ हो, और जब जरा आप पे कोई मुश्किल आए और आपको उसकी जरूरत हो तो पीछे हो जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे? बस वही मुकाम है मुनाफिक का इस्लाम में। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं, इन्हें अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या गालिब आ जाए, तो यकीनन हम इसे बड़ा सवाब इनायत फरमाएंगे। आज भी जो बच्चे गजा में मारे जा रहे हैं, या कल कोई सीरिया में या किसी दुनिया के दौर में था, अल्लाह के उनके बड़े मुकाम है। वो तो खुशकिस्मत है, वो तो एक छोटी सी जिंदगी देकर एक बहुत बड़ी दुनिया के राही बन गए। फिक्र हमें अपनी करनी है कि हमारे ईमान तो नहीं मर रहे। गजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, कहीं यहाँ हमारे बच्चों के ईमान तो शहीद नहीं हो रहे? उनका इस्लाम तो नहीं खत्म हो रहा? उनकी निगाहें, उनके कान कुछ ऐसी चीजों में तो नहीं पड़ रहे जो नहीं होने चाहिए? इसलिए हमेशा दुआ में शामिल रखें अपने आप को भी, और दुनिया में हर उस इंसान को जो किसी भी जगह इस्लाम के नाम पे आजमाया जा रहा है। ये आयत बिल्कुल 75 को जहन में रखिए, और आज की इस दौर की, आज की मुस्लिम तारीख को सामने रखिए, जिस पे मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम भी बोल रहे हैं। और याद रखिए कि 100 दिन चोर के, एक दिन शाह का। अल्लाह करे कि हम मुसलमान इस इम्तिहान से बचे। असल इम्तिहान उन लोगों का नहीं है, असल इम्तिहान हमारा है। हम उसमें पूरे उतरते हैं कि नहीं, इसका नहीं पता, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। फरमाया, भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और इन नातवान मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद ना करो? किसी के कानों पर ये आवाज़ ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हम तो अभी और ही बहुत सारे मसलों मसाइल में उलझे पड़े हैं। वो लोग कौन है जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे परवरदिगार इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे, और हमारे लिए खास अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर दे, और हमारे लिए खास अपने पास से मददगार बना। अल्लाह करे कि अल्लाह गैब से उनकी मदद करे। नसरु मिन अल्लाह की वफतन करी। याद रखिए, अल्लाह ताला आपके मेरी मदद का मोहताज नहीं है। अब्रहा के लश्कर को अल्लाह ने परिंदों के झुंड भेजकर ख़त्म करा दिया। फिरौन को अल्लाह ने पानी की लहरों के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्तिहान आपका है, मेरा है। नसरु मिनल्लाह की वफ़तुन करीब के लिए ईमान की ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज भी ईमान की ताकत ही की बुनियाद पे बहुत सारे कमज़ोर लोग अपने से कई गुना बड़ी दुश्मनों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, अगर ऐसी कोई आजमाइश हम पे आ जाए, क्या हमारे बच्चों में ये ईमान है? क्या आज हमारा ये सब्र और हौसला है? इसीलिए अब अल्लाह ताला ईमान वालों को कहते हैं, जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला बिल्कुल ही कमज़ोर है। क्या पता चला ईमान से मुतल्लिक दो आयात इस रुकू में। 71 निसा, इसका टॉपिक लिखिए दिफाई मजबूती, मजबूत ईमान का हिस्सा है। मुसलमान होने का ये नहीं मतलब कि इंसान अपने दिफा का इंतज़ाम ना करे। अगर पूरी दुनिया वेपन से पाक हो जाए तो मुसलमान भी पाक हो जाएगा। अगर मुसलमान के ऊपर हथियार उठेगा तो मुसलमान को भी हथियार रखने की ज़रूरत है। इसी तरह आयत 76 का मजमून लिखिए, ईमान की ताकत के आगे शैतान की चालें कमज़ोर हो जाती हैं। शरीयत बमुकाबला शहवत है ना, तो इसके लिए शैतान को ईमान के हथियार से मारिए, क्योंकि इसी बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि शैतान क्या क्या आपके बारे में खौफनाक किस्म के प्लान बनाकर बैठा हुआ है। और इस पारे का एंड तो बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह करे कि हम वहाँ तक पहुँच कर उसको बेहतरीन तरीके से इंजॉय करें। और हिजरत, हिजरत की बातें हो रही हैं, हिजरत क्या है? अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। आज हम कोचिस पे बैठ के चाय का कप हाथ में लेके दूसरे हाथ में स्नैक्स लेकर खबरें सुन सकते हैं, लेकिन अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं अल्लाह के लिए क्या छोड़ सकती हूँ। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन। हम तो अपनी नींद नहीं छोड़ के आ सकते। हम कहते वीकेंड पे भी आए, हाय घर वालों का तो मूड था, आज खाने पे जाने का, आज दावत है, आज उधर है, और मैं पारा सुनने आ जाऊं, ये करूं वो करूं। तो लिखिए फेथ इन एक्शन, इकामते दीन के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। आप प्रमेय ये सब कुछ घर से सुन सुना सकते हैं, जैसे माशाल्लाह लोग सुन रहे हैं, लेकिन जहां मौका हो, जहां ऑन साइट पॉइंट्स हो, जाएं वहां बैठिए, उसका हिस्सा बने। जब हर चीज के लिए आपकी गाड़ी निकल सकती है तो दीन के लिए क्यों नहीं? जिहाद सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है, दुनिया के लिए आखिरत को फरोख्त नहीं करना। और आगे है जी 77 से 87 रुकू नंबर 11, मुत्तकीन का इंतखाब आखिरत। यानी मोमिन को जब चॉइस मिलती है ना कि पिक एंड चूज, तो मोमिन आखिरत को चूज करता है। ये आज हम ईमान की शाखों में भी देखने वाले हैं आगे जाके। अलम तर इलल लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू अयदियकुम। 13 साल के मक्का के जुल्म और सितम के मुकाबले में यह आयत थी। अभी नहीं, सबर सबर सबर। कैसे? क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो? फिर जब इन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो इसी वक्त इनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो। खुद से पूछिए, क्या मुझे भी लोगों से डर तो नहीं लगता? बल्कि इससे भी ज्यादा, यानी अल्लाह से भी ज्यादा लोगों से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? शुरू से बच्चे को माँ एक सबक पढ़ा देती है, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगी, ये होगा वो होगा। तो अपने बच्चों को डरपोक मत बनाइए। बिलीवर शुड बी ब्रेव नॉट कावर्ड। बच्चे को बचपन से आपने जिस तरह रेस कर दिया उसी पे उसका माइंड सेट हो जाएगा। तो क्या फरमाया? अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो। फिर जब इन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो इसी वक्त इनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि इससे भी ज्यादा, और कहने लगे, ऐ हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज किया? देखिए रोना पड़ जाता है ना, तू फर्ज करता ना हमें निकलना पड़ता, ये अंदाज है। क्यों हमें थोड़ी सी जिंदगी और ना जीने दिया? क्या आज उम्मत मुस्लिमा में से अक्सरियत का यही गुमान नहीं है? ऐसे लोगों को अल्लाह अपने नबी के जरिए से एक पैगाम देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि दुनिया का फायदा यानी दुनिया की सूदमंदी तो बहुत ही कम है, और परहेजकारी के लिए तो आखरत ही बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी। यह है वो आयत जो शुरू में तस्करा हुआ था, मौत तो आएगी, गो तो मजबूत कलों में हो, और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं। कभी आप भी जब झुंझला जाती है ना, तो अपने बच्चों से यही कहती होंगी, क्या हो गया तुम्हें, समझ नहीं आती, मत मरी गई है, अक्ल किधर गई, घास चरने गई। यानी एक ऐसा जिसमें एक दर्द भी है, गुस्सा भी है और मोहब्बत भी छुपी हुई है कि तुम्हें नहीं पता कि ये चीज़ तुम्हारे हक में ठीक नहीं और तुम इसकी जिद कर रहे हो, और तुम्हें ये नहीं पता ये तुम्हारे हक में अच्छी है और तुम इसको नहीं ले रही। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को इस कुरान में महसूस कीजिए। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है। माँ गर्रक बिरब्बी कल करीम, सूरह इन्फितार में आता है कि तुझे तेरे रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया। आज हमने अल्लाह का बड़ा नेगेटिव इंट्रोडक्शन दिया अपनी नस्लों को, माफ कीजिए। वो अल्लाह जो मारेगा, वो अल्लाह पकड़ेगा, आग में डालेगा, क्या बात करते हैं आप? क्या छोटे बच्चों को ऐसी बातें बताते हैं? तो बाज दफा हम बचपन में इतना थ्रेट कर देते हैं कि फिर बच्चे बड़े होने तक नेगेटिव ही रहते हैं अल्लाह के बारे में, जबकि अल्लाह ताला का पैगाम क्या है? आपको जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो आपके अपने नफ्स की तरफ से है। हमने आपको लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह काफी है। इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ इन पर निगेबान बनाकर नहीं भेजा। ये कहते तो हैं कि इताअत है यानी कि बात मानेंगे, लेकिन फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या उसने कही है उसके खिलाफ रातों को मशवरा करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला काफी कारसाज है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अफला यतदब्बरून अल कुरान। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। जहां इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली उन्होंने इसे मशहूर कर दिया। हालांकि अगर ये लोग इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज करते हैं। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो सिवाय चंद लोगों के तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। कैसे अल्लाह ताला आपको खोल खोल कर एक एक बात बताते हैं। तो आप अल्लाह की राह में जिहाद करते रहिए, आपको सिर्फ अपनी जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाते रहिए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है और सजा देने में भी सख्त है। इससे पता चला कि अल्लाह एक कुन कहेगा और जंग खत्म हो जाएगी। अल्लाह एक कुन कहता है तो दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो नजरें अल्लाह पे लगाओ। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे इसे भी इसका कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे इसके लिए भी इसमें एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो यानी अल्फाज को लौटा दो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो तुम सबको यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से सच्ची बात वाला और कौन होगा? क्या जवाब देंगे? कोई भी नहीं होगा। अल्लाह की बातें सच्ची। आपने कितनी बातें इस रुकू में देखी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने आपको मुझे मुख्तलिफ तरीके से ये बता दिया कि जितनी अल्लाह की बात मानते जाओगे अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को भी आसान करेगा और आखिरत भी तुम्हारी खूबसूरत होगी। ईमान से मुतालिक दो आयात इस रुकू में देखी, निसा 83। इसका टॉपिक लिखिए, बगैर तहकीक खबर आगे नहीं पहुंचानी चाहिए, रियोमर्स नहीं फैलानी चाहिए। पहले फिर भी जरा सा मुश्किल था, आज एक क्लिक हजारों लोगों तक आपका पैगाम पहुंचा देता है। हाय हाय, ये हो गया, ये खबर हो गई, हाय ये वीडियो रिलीज हो गई, हाय ये फिल्म हो गई। ऐसा क्योस पैदा करके वीडियोस के लिंक शेयर करते हैं, पता नहीं नीयतें क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए फिर बोलिए, पहले सोचो तोलो फिर बोलो। हम क्या कहते हैं, बस बोलो बोलो बोलो, जो होगा देखी जाएगी। किसी की इज्जत उछालते हैं सिर्फ एक क्लिक पे। हुक्मरानों की, मजहबी रहनुमाओं की, अदाकारों की, गुलुकारों की, किसी की कोई मीम नहीं बनानी, किसी का कोई मजाक नहीं करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब बंदा किसी की इज्जत के पीछे लगता है ना, अल्लाह उस बंदे की इज्जत के पीछे लग जाता है। फिर इसी तरह 84 निसा में क्या मैसेज है, जन्नत पाने के लिए जिहाद एक रास्ता है। यानी जिहाद के दूसरे सिरे पे जन्नत का लफ्ज लिखा हुआ है। कभी कभी आपको छोटे छोटे रोड्स पे जाना पड़ता है, कभी आप सीधी रोड लेते हैं और वो एंड पे आपकी मंजिल पे पहुंचती है, जिहाद वो है। लेकिन हमें तो ना जिद्दोजहद का पता है, ना हमारे अंदर वो ईमान की गर्मी है। तो नोट करिए, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, इस वादे को पाने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। और जिहाद कलम से शुरू होकर हथियार पकड़ने का नाम है। जिहाद नफ्स के ऊपर पांव रख कर शहवात पे काबू पाने, और जिहाद भी नफ्स से शुरू होता है। ये सबसे करीब तरीन है, हमारे करीब है जब हम शुरू तो करें, लेकिन आला तरीन जिहाद दुश्मन के सामने कलमे हक पेश करना, और जो मैदान जंग में आ जाए फिर उनके सामने सीना तान के खड़ा होना, ये जिहाद है। मैदान जिहाद से भागना कबीरा गुनाह है, क्योंकि उस बंदे ने अपनी जान बचाते हुए इस्लाम की जान को खतरे में डाल दिया। तो लिहाजा इस पे कोशिश करनी है, और फेथ इन एक्शन के पॉइंट, कुरान पे गौर व फिक्र करना है, खबर को बिला तहकीक आगे नहीं पहुंचाना, सलाम करना है और सलाम को आम करना है। आगे जी रुकू नंबर 12, 88 से 91, मुनाफिक के दिल का खोट। फमा लकुम फिल मुनाफिकी नफियतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू। तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों में दो किरदार दो गिरोह हो रहे हो? इन्हें तो इनके आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया है। अब क्या तुम ये मंसूबे बना रहे हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो? जिसे अल्लाह राह भुला दे, तू हरगिज उसके लिए कोई राह ना पाएगा। नोट कीजिएगा, मुनाफिकीन का तस्करा इस सूरत में बार बार क्यों आएगा? इसलिए कि जब भी दीन के अमली तकाजे सामने आते हैं, उस वक़्त मुनाफिक पीछे हट जाता है। उसको ये लगता है कि वाय मी, मैं ही क्यों, मुझसे ही क्यों पूछते हो? तो इस आयत को पढ़ते हुए अगली आयत को पढ़ने से पहले अपने आप को मैं और आप चेक करेंगे और अपने से एक वादा करेंगे कि जहाँ दीन का कोई तकाजा आ गया, हमने पीछे नहीं हटना और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाना है। फिर इसके बाद फरमाया, इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी इन्हीं की तरह कुफर करने लगो, फिर सब यकसां हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन न छोड़ें, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त न बनाओ, फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहां भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार, इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार ना समझ बैठना, सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हो, जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी दिल तंग करते हैं और अपनी कौम से भी जंग करने में तंग दिल है, यानी दोनों ही तरफ से बड़े अमन में रहना चाहते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, तो वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं रखी। ये पूरी मुस्लिम फॉरेन पॉलिसी है। ये जितनी आयतें पढ़े, मदीना में रहते हुए किस से कहाँ कितनी कैसी बात करनी है, ये आयतें उसका अमली इजहार है। तुम कुछ और भी लोगों को ऐसा पाओगे जिनकी बजाहर चाहत ये है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो उन्दे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी ना करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जमबानी ना करें और अपने हाथ ना रोक लें, तो इन्हें पकड़ो और मारो जहां कहीं भी पालो। यही वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत इनायत फरमाई है। मदीना में आने के बाद जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की चीजें एक एक करके पेश की, तो वो जिनके दिलों में खोट था ना, वो हर जगह आके रोड़ा अटकाते थे, हर्डल्स बनाते थे। अल्लाह ताला ने उनके साथ डील करने का तरीका बता दिया, टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा तुम भी उसके साथ वैसा करोगे। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत है इस रुकू में, 91 निसा। इसका मजमून क्या है? गलत को गलत ना कहना, ये भी एक फितना है। आज इस फितने में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। वो कहते हैं, नहीं हम क्यों बुरे बने, हम क्यों गलत कहें, फिर वो लोग दुश्मन होंगे। तो यही तो एक आपका इम्तिहान है। फेथ इन एक्शन क्या है? माहदों को पूरा करना है। सोचिए जरा, आपने कोई कमिटमेंट किया हुआ फिर पूरा नहीं किया, आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ, आपने किसी को कोई उम्मीद दिलाई भी, अच्छा मैं ये करूंगी, फिर नहीं किया, तो फौरन कीजिए इस आयत को सुनकर। इसी तरह दुश्मन और इसकी मौका परस्ती से बचने की फिक्र करनी है और कोशिश करनी है कि अल्लाह के रास्ते में खड़े रहें। इस रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, आप खड़े और सच्चे हैं, अल्लाह आपको ज़रूर बचाता है अपनी रहमत से। आगे रुकू नंबर 13, 92 से 96, कत्ल और दियत का बयान। आप फील कर रहे होंगे कि जैसे दूसरे पारे में हमने एग्जाम में बिर पढ़ी थी ना, आलमोस्ट शरीयत की सारी ही चीज़ें कवर हुई थी, इधर भी ऐसे ही है। और मज़े की बात देखिए कि उधर भी पूरा पारा सूरह बकरा का था, इधर पूरा पारा सूरह निसा का। ये वो कुरान का नज़्म है। जब हम और छोटे छोटे कोर्सेज इंशाल्लाह बाद में आपको ऑफर करेंगे, तो उसमें नज़्म कुरानी का एक कोर्स है। पूरे कुरान में एक रब्त है। आप यानी इसको फील करके ना कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि वल्लाही माला हाजा कलामुल बशर, कि ये कलाम अल्लाह का है, किसी बशर का ये कलाम नहीं। तो आइए देखते हैं, किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं। इसी पारे के शुरू में क्या पढ़ा? खुदकुशी हराम है। और यहाँ आ गया है कि दूसरे को मारना भी हराम है। इससे भी ज़्यादा कोई पीसफुल दीन है? अब अगर आपने ये आयतें पढ़ी हैं, चले आपको आज दरे कुरान के सेशन से याद आ जाएगा, हाँ ये तो मैंने कुरान में पढ़ा, आप किसी नॉन मुस्लिम पे बात कर सकते हैं, जब वो कहता है भाई इस्लाम तो ऐसा है, ये तो बर्बरी कहिए, तो आप कहेंगे नो, मैंने तो खुद कुरान में पढ़ा, खुदकुशी हराम है। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए एटलीस्ट फातिहा से नाज तक कुरान का तर्जुमा याद करें। ख़ास तौर पे आप में जो यंग बच्चियाँ बैठी हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, हर जुबान में मौजूद है आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुमकिन हद तक कोशिश हो। कुरान को तर्जमे से पढ़ना ऐसे ही है जैसे अल्लाह से बातें करना आ जाता है। समझ आती है आपको नमाजों में और जो कुछ भी आप पढ़ते और सुनते हैं। फिर यहाँ कत्ले ख़ता की बात है, यानी बाय मिस्टेक किसी से कोई मारा जाए तो क्या होगा। फरमाया, मगर गलती से हो जाए तो ये और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला इरादा यानी बिला कसद मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के अजीज़ों को खून बहा देना है, हाँ ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ़ कर दें। और अगर मकतूल तुम्हारी कौम का हो और हो भी वो मुसलमान, तो सिर्फ़ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आज़ाद करनी लाजमी है। और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और उनमें अहदो पैमा है, तो खून बहा लाजिम है जिसके कुंबे बालों को पहुँचाया जाए। और एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना भी ज़रूरी है, बस जो ना पाए इसके ज़िम्मे लगातार 2 महीने के रोज़े हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए। और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। पहले कौन सा था, बाय मिस्टेक कोई कत्ल हो जाए, अब इस आयत में जान के कत्ल करना जो कबीरा गुनाह है। और जो कोई किसी मोमिन को इरादे से यानी कसदन पर्पसली कत्ल कर डाले, इसकी सज़ा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह का गज़ब है, इसे अल्लाह की लानत है और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार किया गया। कितनी सजाएं हैं, दोजख, हमेशगी, गज़ब, लानत, और ये 5 सजाएं किसी को कत्ल करने पे। अगर इस आयत को आम कर दिया जाए तो क्या हमारे मुल्क के वो सारे कत्ल ना रुक जाएं जो विरासतों के झगड़ों पे हैं, ज़मीनों के झगड़ों पे हैं, गैरत के नाम के जो कत्ल हैं? कितना आसान है एक बंदे को मरना। और आप सोचिए जो नस्लों की नस्लें कत्ल कर रहे हैं, उनका क्यामत के दिन क्या अंजाम होने वाला है। और आगे फिर आपको आपके रब की पुकार, या अय्युहल्लज़ीना मनु इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़तबय्यनू, ए ईमान वालो जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम इसे ये ना कहो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी ज़िंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह के पास तो बहुत सी गनीमतें हैं, पहले तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, बस तुम ज़रूर तहकीक और तफ्तीश कर लिया करो, रिसर्च कर लिया करो, ऑथेंटिसिटी मालूम कर लिया करो उस बात की, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। एक वाक़या था जिसकी तरफ इशारा है। मुसलमान किसी जगह एक मार्के पे थे, इकट्ठे होकर गए, और वहाँ से एक शख्स ने जब इनको देखा तो कलमा पढ़ा। साहबी थे, ज़ाहिर इंसान थे, गलती होती है, उन्होंने सोचा कि इसने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अब उसके घर वाले, बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, मुकदमा चला, ये सारा वाक़या उसमें है। इससे पता चलता है कि सोच समझ के काम करना चाहिए। और काफिर कहना किसी को, ये तो अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, फलां जहन्नमी, फलां काफिर, अस्तगफिर, बड़े से बड़े, मैं कहती हूँ फासिक, मुनाफिक से भी बड़ा होता है, काफिर भी फासिक होता है, यानी कुफर तो है ही जुर्म, कुफर में फिस्क उससे बड़ा है, जो खुलेआम गुनाह करते हैं, उनके बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि आपको जन्नत नहीं मिलेगी या आपको अल्लाह नहीं बख्शेगा। पिछले पारे में हम पढ़ कर आए हैं कि नबी को अल्लाह ने रोक दिया था कि आप नहीं कह सकते कि इनको हिदायत नहीं मिलेगी। तो कभी अपने बच्चों को भी ना कहें तुम्हें हिदायत नहीं मिलनी, मियाँ के बारे में मत कहें कि जी बस आपको नहीं मिलनी, हमेशा अल्लाह से दुआ कीजिए। और अल्लाह ने कहा कल तक तुम भी तो दीन से दूर थे ना। इसमें एक और बड़ा प्यारा नुक्ता है, कभी भी किसी के बारे में कोई चीज़ दिखे तो अपना वक्त तो याद कीजिए, जब आप उसकी जगह पे थे तो आप कैसे थे। फिर आगे खूबसूरत बात, अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बग़ैर उजर के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं, यानी घरों से निकलकर अल्लाह के रास्ते में आने वाले और बिला वजह बैठे रहने ले बराबर नहीं। उजर है तो ठीक है, कई जगह उजर होती हैं, कई जगह उजर नहीं होता। अल्लाह ताला ने इधर एक तकाबुल दिए कि जितना गुड़ उतना मीठा, जो जितनी कोशिश करेगा उसका उतना फ़ायदा होगा। आप अगर आज की ये पारा अपने घर से सुनते तो जूँ ही टाइम होता आप अपना खोलते, जूम रूम तो आधा घंटा पहले खुल जाता है ऑलमोस्ट, बैठ के सुनते, बंद हुआ तो ख़त्म, ना आपको तैयार होना पड़ता, क्योंकि घर वालों का नसीब कहाँ कि आप उनके लिए तैयार हो। माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप गाड़ी में बैठे सफ़र किया, जो करीब से आया दूर से आया, 15-20 मिनट तो यहाँ कुछ भी नहीं होता ना, फिर आप यहाँ बैठे, फिर यहाँ से एंड पे ज़रा सहेलियाँ दोस्तों से बातें चीते, फिर यहाँ से गाड़ी में बैठे, तो आपका तो एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा लगा, तो क्या आपको अजर ज़्यादा ना दे अल्लाह? ये बात अल्लाह कर रहा है। जो कर सकते हो वो तो करो, जो नहीं कर सकते वो नहीं। अब जो घर से सुन रहे हैं वो क्या करेंगे बेचारे, वो घर से ही सुनेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये हुज्जत है, सारे शहर में डिफरेंट जगहों पे हुज्जत हैं, तमाम करके बैठे हुए हैं लोग। आ जाइए, अगर आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं तो कई लोगों की ये आजमाइश भी है कि तुमने करीब भी नहीं था आना, दूर कहाँ जाते। याद रखिए, एक जुमला लिख लें, बास दफा मजबूरियों के नाम पे हमारी मुनाफ्त छुप जाती है। वो मजबूरी ना भी आती ना, हमने काम वो करना फिर भी कोई नहीं था, कोई पाबंदी ना भी लगाता तो हमने फिर भी नहीं था करना। तो ये हमारा इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं ऐसे लोगों की, फरमाए अपनी मालों और जानों से जिहाद करने वालों को, बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जों में बहुत फजीलत दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया, यानी घर से सुनने वाले भी बहुत अच्छा कह रहे हैं, घर से रहने वाले भी अच्छे थे। असल में तो आयतें मैदान जंग के जिहाद की है ना, जो वहां हो रहा था। लेकिन आज आपके मेरे लिए इसमें अमल का नुक्ता क्या है कि जितनी नेकी कर रहे हो ना, ये ना देखो, ये देखो क्या कर सकता था और वो नहीं कर रहा। लोग वो देखते हैं जब हम कर रहे हैं, अल्लाह वो भी देखता जब हम कर सकते थे और नहीं करे। अकेले आए हो, साथ किसी को ले आते, देर से आए हो जल्दी आ जाते, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे नहीं हो सकते थे, राइट? तो हमेशा अपने आप को पहले से अच्छे मुकाम पे देखिए। और लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है, अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी। और अल्लाह बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है, यानी जितना जिसका एफर्ट कोशिश मेहनत हुई अल्लाह उसको उतना ही देगा। तो क्या पता चला ईमान से मुतल्लिक इसमें चार आयते हैं। जरा सा अपने ईमान का जायजा लें, थोड़ी देर सोचिए भला मैं ईमान के किस दर्जे पे हूँ। वो कहते हैं ना कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तो खुद से बातें करना सीखिए, इससे इंशाल्लाह नेकियों के दरवाजे खुलते हैं। जी आगे चलते हैं, हमारे पास ईमान से मुतल्लिक चार आयात हैं। आपको हैरत नहीं होती वैसे, कभी आपने सोचा है पूरे कुरान में सबसे ज्यादा किस चीज़ का जिक्र आ रहा है? ईमान, ईमान, ईमान। और हम झगड़ते रहते हैं छोटे छोटे अमलों पे, हाथ इधर बांधो, हाथ उधर बांधो, ऊंचा सजदा, नीचा सजदा। कितना दिल छोटा लगता है इन बातों को सोचने में, लोगों के बस ईमान ही नहीं। आज हमारे यहाँ मस्जिदें बट जाती हैं सिर्फ नमाज के तरीकों पे, और ईमान का तो एक ही तरीका है, अल्लाह से मोहब्बत का तो एक ही तरीका है। तो ज़रा नोट करिएगा आयत 92 निसा में क्या मैसेज है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। निसा 93, मोमिन का कातिल हमेशा जहन्नुम में रहेगा। निसा 94, किसी मुसलमान को काफिर कहना दुरुस्त नहीं। निसा 95, हर इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक अजर मिलेगा। फेथ इन एक्शन, दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करना है, बुराई के खिलाफ मुआशरे में जिहाद करना है, नेक अमाल करने हैं और नेकी को फैलाना है, यानी हमारी जिंदगियों के किबले दुरुस्त करने की ज़रूरत है।